हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 16, टेक्स्ट नंबर 16। इस आध्यात्मिक ज्ञान को समझने के लिए हृदय की समस्त मलिनता और बुद्धि से समस्त भौतिक विचारों का परित्याग करके मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन करने वाले हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञान तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा महयम् ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्दे अहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवाश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् सात्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादा सहगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च। हे कृष्णकरुणासिन्धु दीनबन्धु जगत्पति गोपेश गोपीकान्ता श्रीराधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचनम गौरंगे श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसूत देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वंशकल्पतरुभ्यस्य कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैतम गदाधरम श्रीवासदी गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता मात की जय हो। भगवान श्री कृष्ण ने शुरू के 16 नंबर चैप्टर के शुरू के 3 श्लोकों में हमें दैवी गुणों के विषय में बताया, और श्लोक नंबर 4 से लेकर अब तक हम 15 श्लोक नंबर 15 तक पढ़ चुके हैं, मतलब 11 श्लोक्स हो चुके हैं, और भगवान थक नहीं रहे हैं, भगवान का दिल नहीं भर रहा है आसुरी गुणों का वर्णन करते हुए। भगवान कंटिन्यूस बता रहे हैं ऐसा, और भी भगवान श्री कृष्ण अभी हमें 16, 17 और 18 में भी यही आसुरी गुण ही बताएंगे। यानी कि इस अध्याय में टोटल 14 श्लोक भगवान श्री कृष्ण ने कहे हैं, जो सिर्फ और सिर्फ आसुरी गुणों का वर्णन जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने किया है। ऐसा लग रहा है आईना दिखा रहे हैं भगवान, ऐसे कभी कभी बोलते हैं ना, आईना दिखाया तो बुरा मान गए, या धूल चेहरे पे थी और आईने साफ करते रहे। आज तक यही हुआ है, हमने अपने अंदर झांकने की कोशिश नहीं की है, लेकिन भगवान बोल रहे हैं कि देखो आप पहले देख लो कि आप कहाँ खड़े हो। श्लोक नंबर 18 तक, अभी हम लोग 16 पढ़ रहे हैं ना, 17 और 18 तक भगवान श्री कृष्ण कंप्लीट असुरी गुण बता देंगे, और अब भी हमें गौर से उनको सुनना है, जितना सुन चुके हैं उनको कंठस्थ रखना है, उनको याद रखना है कि यदि इनमें से एक भी गुण हमारे अंदर शेष रह जाएगा तो हमारे साथ क्या होगा, उस सत्य का उद्घाटन जो है वो भगवान श्री कृष्ण 19 श्लोक से स्टार्ट करेंगे कि जो इन गुणों को ग्रहण करता है या जो इन आसुरी गुणों में जी रहा है उनके साथ में क्या सुलूक करने वाला हूँ, उनके साथ में क्या करता हूँ, कितनी क्रूरता बताई भगवान श्री कृष्ण ने श्लोक नंबर 19 और 20 में कि जब मैं पढ़ती हूँ तो लरस जाती हूँ कि भगवान ऐसा, इतनी क्रूरता भगवान के अंदर। लेकिन इससे पहले हमें ये पता चले कि भगवान श्री कृष्ण उनके साथ ऐसा क्यों करते हैं, इसे भगवान श्री कृष्ण सारे श्लोक्स में उनके विषय में पहले बता देते हैं। पहले देख लो कि उनका अपराध क्या है, फिर देखना कि मैं उनके साथ जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। क्योंकि अगर किसी ने ये सारे अपराध ना पड़े होते, आसुरी गुण आसुरी प्रकृति के विचार ना पड़े होते, खाली शुरू से ही 16.20 अगर पढ़ लेता ना तो शायद भगवान को बहुत ज्यादा क्रूर समझता, भगवान को भक्तवत्सल या दीन दयाल या फिर पति तपावन नहीं समझता। सोचते ही कृष्ण कितना सबको क्रूरता के साथ है ना पनिशमेंट दे रहा है, ऐसा हमारे अंदर विचार आ जाता। लेकिन हमें भगवान श्री कृष्ण ने इसीलिए शुरू से सब कुछ बता दिया और श्री प्रभुपाद जी बहुत सुंदर से हमें बता रहे हैं। आज के श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं 16.16 अनेक चित्त विभ्रांता मोह जाल समावृता प्रसक्ता काम भोगेशु पतंती नरकेशु चि। अनेक चित्त विभ्रांता, अनेक कहते हैं बहुत सारे, बहुत चिंता मतलब अनेक चित्त विभ्रांता, और चित्त का मतलब होता है चिंताओं से, विभ्रांता का मतलब होता है उद्विग्न, यानी कि बहुत सारी चिंताओं से डिस्टर्ब होकर परेशान होकर, क्योंकि उसका लक्ष्य क्या होता है इंद्रिय तृप्ति, सुख प्राप्त करना भौतिक वस्तुओं से, ये अर्जित कर लूं वो अर्जित कर लूं, लेकिन क्योंकि उनमें सुख होता नहीं है इसलिए वो चिंताओं में कि कितना मैं मेहनत कर रहा हूँ लेकिन उसका रिजल्ट में मुझे सुख नहीं मिल रहा है, तो चिंताएं उत्पन्न हो रही हैं। मोह जालत समावृता, मोह कहते हैं गुमराह हमें, यानी कि मोहित हो जाता है वो जाल, यानी कि एक ऐसी पाश में, एक ऐसे जाल में, ऐसे चक्रव्यूह में, मोह के चक्रव्यूह में वो गिर जाता है, बहुत सारी चिंताओं से ग्रस्त हो जाता है। और प्रसक्ता यानी आसक्ति, उसके अंदर आसक्ति होती है किसके प्रति आसक्ति होती है, प्रसक्ता काम भोगेशु, काम का मतलब क्या है इंद्रिय तृप्ति, उस इंद्रिय तृप्ति के जाल में और भी फंसता रहता है, एक चीज खाली उससे मजा नहीं आया और दूसरी चीज चाहिए, एक चीज को प्राप्त कर लिया, ये एक गाड़ी मिल गई, पहले साइकिल मिली उससे तृप्ति नहीं हुई, फिर बोला मुझे बाइक चाहिए, बाइक से तृप्ति नहीं हुई, फिर बोला गाड़ी चाहिए, गाड़ी से तृप्ति नहीं हुई, फिर बोला इससे भी बड़ी गाड़ी चाहिए, मतलब एक घर छोटा घर, उससे बड़ा अच्छा एरिया, इससे बेहतर, इन सारे मोह जाल में, इंद्रिय तृप्ति के मोह जाल में वो फंसता जाता है और उसके लिए इतने घृणित कर्म करता है कि भगवान लास्ट में भगवान को कहना पड़ा पतंती नरकेशु जी, पतंती मतलब गिर जाते हैं, नरकेशु जी मतलब नरक में, जितने नरक, अशुचि का मतलब होता है नरक, ऐसे अपवित्र लोगों की जगह है जो कि अपवित्र होते हैं, जिनके विचार अपवित्र होते हैं, जिनके कर्म अपवित्र होते हैं। देखो भगवान की कृपा के हम अगर इस संसार में आकर अपवित्र विचार रखते हैं और फिर भगवान सोचते हैं कि तुम्हारे क्योंकि मानसिकता ऐसी है कि तुम अपवित्र विचार ही रखते हो तो फिर इस संसार में रहने की क्या जरूरत है, वहीं पर जाओ जहाँ पर ऐसे अपवित्र वाले विचारों को समर्थन दिया जाता है या फिर उन ऐसे ही जगहों पर तुम्हें रहना चाहिए, यहाँ पर तो तुम्हारा काम ही नहीं, यहाँ पर तो संसार में तो तुम तपस्या करने के लिए आए, जीवस्य तत्व जिज्ञासा, ये जीवन तुम्हें भगवान की जिज्ञासा के लिए, अपने जीवन को तपस्या में डालने के लिए मिला, यहाँ पर नहीं रह सकते हो तुम, अपने यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं कर सकते हो तो निकलो यहाँ से, जाओ नरक में तुम्हारे रहने की जगह है, नरक में भेज देते हैं भगवान श्री कृष्ण। और कह रहे हैं इस प्रकार अनेक चिंताओं से उद्विग्न होकर तथा मोह जाल में बंध कर वे इंद्रियों में अत्यधिक इंद्रिय भोग में अत्यधिक आसक्त हो जाते हैं और नरक में गिरते हैं। यहाँ पर साफ साफ भगवान बताना चाह रहे हैं कि हर वो शय, हर वो कार्य, हर वो एक्टिविटी जो जिसके जरिए आप अपनी इंद्रियों को तृप्त करना चाहते हो, जिसके जरिए लालसा ये होती है कि मैं कैसे अपनी इंद्रियों को तृप्त करूं, वो आपको नरक की ओर लेकर जा रहा है। और भगवान श्री कृष्ण बहुत ही सुंदर बताएंगे हमें कि तीन द्वार होते हैं नरक के। ये 18 श्लोक में बताएंगे कि नरक में जाने के तीन द्वार होंगे और उनमें से किसी एक को भी अगर हम उस रास्ते को चुनेंगे तो डेफिनेटली नरक में जाएंगे। बहरहाल आज के श्लोक का तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं, आसुरी व्यक्ति धन अर्जित करने की इच्छा की कोई सीमा नहीं जानता, उसको पता ही नहीं है कि कितना चाहिए। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को हम जानते हैं कि ना उनके पास बहुत सारे करोड़ों रुपए होते हैं, इतने होते हैं कि उनकी सात पीढ़ियां अगर घर पे बैठ के खाएं तो भी उनको है ना इसकी टेंशन नहीं है कि आगे मेरे बच्चों का क्या होगा, या मतलब कमा क्यों रहे हैं इतना, उनको ये भी पता नहीं है। बस उनके जीवन का लक्ष्य ये होता है कि धन अर्जित कर रहे हैं। उनके इवन ज्यादातर अमीर लोग क्या होता है, उनके रिलेटिव्स भी कम होते हैं ज्यादातर, मतलब सारे रिलेटिव्स भी अमीर होते हैं, उनको भी नीड नहीं होती, ठीक है, और उनकी संतानें भी कम होती हैं। ज्यादातर अमीर लोग एक या दो बच्चे करते हैं, तो उनको मतलब अगर आपके पास 50 करोड़ हैं या 20, मतलब 50 करोड़, 60 करोड़ कितने भी हैं अगर हैं, तो फिर आपको मजीद अर्जित करने की जरूरत क्या है? इनफ ना, तुम्हारी लाइफ 60 साल गुजर जाएगी और तुम्हारे बच्चे की लाइफ उसके बाद 60 साल, वो भी उसमें से अच्छे तरीके से, मतलब घर पे बैठे लुटाता रहे तो भी गुजर जाएगी। ऐसा बताया जाता है, शास्त्र कहते हैं, पूत सपूत तो क्या धन सोहे, पूत कपूत तो क्यों धन सोहे। यानी कि अगर आपका पुत्र जो है वो सपूत है, सपूत मतलब इतना संस्कारी है कि वो मतलब विधि विधानों का पालन करके अपने जीवन को निर्वाह कर सकता है, तो तुम्हें धन अर्जन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि मुझे किस तरह से जीना है, मेरे जीवन का लक्ष्य कृष्ण प्राप्ति है, और मुझे जो भी इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ नहीं करना है, जो भगवान की इच्छा से जाए या जो कर्मों के अनुसार मुझे प्राप्त हो रहा है वो इनफ है मेरे लिए। अगर वो ऐसा सोचता है तो फिर तुम्हें ज्यादा धन अर्जित करने की जरूरत नहीं है। जितना तुम मतलब जितना जीवस्य तत्व है ना, कामस्य नेन्द्रिय प्रीति लाभो जीवित जाता, इंद्रिय प्रीति के लिए ज्यादा धन अर्जित करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जितना धन इकट्ठा करो जितने से तुम जी सको बस। और आगे बताया, पुत्र कपूत तो क्यों धन सोहे। अगर तुम्हारा पुत्र जो है वो संस्कारी नहीं है, उसके अंदर ये संस्कार नहीं दिए हैं कि मुझे क्या करना है, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, मुझे किस तरह से अपने जीवन को गुजारना है, ये जीवन किस लिए मिला, यदि ये सारी चीजें उसको नहीं पता, तो तुम्हें करोड़ों करोड़ों अरबों खरबों रुपए जमा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो कपूत है, वो लुटा देगा, वो नहीं रखेगा, भले करोड़ों हो अरबों हो क्या, ऐसे लुटाएगा, खत्म कर देगा सारे पैसे। तो फिर तुम्हें ना उसके लिए भी अर्जित करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आखिर में तो उसको कंगाल ही होना है। तो ये इससे शास्त्र कहता है कि लाभो जीवित जायता, जितना कमाओ जितना कि तुम्हारे लिए बस जीने के लिए उपयुक्त हो, कि मेरे जीने के लिए इतना काफी है, फिर भगवान का भजन करो। तुम्हें ये संसार में जीवन मिला ही कृष्ण प्राप्ति के लिए है, धन अर्जित करने में उसे क्या तुम जाया कर रहे हो। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, आसुरी व्यक्ति धन अर्जित करने की इच्छा की कोई सीमा नहीं रहती। तो आप लोग जान लेना, आपके सामने जैसा भी ऐसा बंदा आए ना जो सिर्फ और सिर्फ धन अर्जित करना ही अपने जीवन का लक्ष्य समझता है, तो फिर उसके सर पे दो सींग लगे हुए देखना कि ये असुर है। क्योंकि आज के इस युग में असुर जो है वो सर पे दो सींग लगाकर नहीं आएंगे, या फिर ऐसा काला मुंह लेकर, या फिर लंबे लंबे दांत लेकर नहीं आएंगे, ऐसे हमारे जैसे ही लगेंगे, लेकिन वो असल में असुर होंगे। वो भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि उसके अंदर क्वालिटीज जो होंगी उसके अनुसार वो असुर होंगे, कि उनके धन अर्जित करने की कोई सीमा उनको पता ही नहीं होगी, उनकी इच्छा असीम बनी रहती है, वह केवल यह सोचता रहता है कि उसके पास इस समय कितनी संपत्ति है, और ऐसी योजना बनाता है कि संपत्ति का संग्रह बढ़ता जाए। आज के मनुष्य की ये मनोवृत्ति भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि उसके माइंड में और चीज आती ही नहीं है, सिर्फ यही होती है कि अगर मेरे पास 1,00,000 रुपए हैं तो मैं कैसे उसको 2,00,000 रुपए बनाऊं। और भगवान ने साफ साफ उनको सर्टिफिकेट दे दिया कि यू आर असुर, आप असुर हो, क्योंकि आपको आपके जीवन का लक्ष्य ही नहीं पता, खाली धन अर्जित करना ही आपको पता है कि यही मेरे जीवन का लक्ष्य है। इसीलिए वह किसी भी पाप पूर्ण साधन को अपनाने में झिझकता नहीं है और अवैध तृप्ति के लिए कालाबाजारी करता है। वह पहले से अपनी अधिकृत संपत्ति तथा भूमि, परिवार, घर और बैंक पूंजी पर मुग्ध रहता है और उनमें वृद्धि के लिए सदैव योजनाएं बनाता रहता है। उसको यानी श्री प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि जब उसको उसका लक्ष्य क्या लगता है, ज्यादा से ज्यादा धन अर्जित करना, फिर कालाबाजारी करना, रिश्वत लेना, ऐसे ऐसे कार्य करना जो पाप पूर्ण होते हैं, उसमें कुछ उसको उसको लगता ही नहीं कि अपराध है। मतलब किसी को अगर आप बोलो कि नहीं करना चाहिए ये चीज अपराध होती है या फिर नहीं करना चाहिए, तो उसको लगेगा ही नहीं, वो बोलेगा ये तो पागल है, इसको तो समझ में नहीं आ रहा, धन अर्जित नहीं करेंगे तो जीवन कैसे गुजारेंगे। एक श्री प्रभुपाद ने एक किसी से बोला कि भाई आपको है ना अपने 24 घंटे में से 2 घंटे भगवान के लिए निकालने चाहिए और भगवान के नाम का स्मरण करना चाहिए। तो उसने बोला प्रभुपाद मैं इतना ज्यादा बिजी रहता हूँ, मेरे इतने सारे कारोबार हैं, इतना मेरा मतलब मेरा बहुत ही वसी कारोबार है, इतनी सारी फैक्ट्रीज हैं, मैं 2 घंटे नहीं निकाल सकता हूँ, मैं मुश्किल से अपने खाने के लिए समय निकालता हूँ, मैं भगवान के लिए 2 घंटे निकालना संभव है। तो श्री प्रभुपाद ने कहा अच्छा आप इतने ज्यादा बिजी हो, तो बोला वाकई आप मेरी डेली रूटीन सुनोगे ना आपको चक्कर आने लगेंगे कि मैं कैसे जी रहा हूँ। तो बोला अच्छा इतनी सारी बिजी होने का, इतना सारा मेहनत करने का फल तुम्हें क्या मिल रहा है, एक दिन में तुम कितना मतलब उसको यूज कितना कर रहे हो, अपने लिए अपनी खुशी के लिए क्या कर रहे हो। तो उसने बोला मैं आपको स्वामी जी सच्ची सच्ची बात बता रहा हूँ कि अपने लिए तो समय नहीं निकलता, अपने लिए समय, अपने एंजॉयमेंट के लिए समय नहीं निकलता, इतनी सारी फैक्ट्रीज हैं, इतने सारे कारोबार हैं और बस 2 रोटी और 1 कप चाय मिल जाता है सुबह को, और दोपहर का खाना का जो लंच होता है ना वो खाने का टाइम नहीं मिलता, और रात को तो इतना टायर्ड होता हूँ घर पे जाता हूँ बस ना, और उस टाइम पर भी कॉल आ रहे होते हैं और वो जैसे तैसे खाना 2 रोटी और भी खा लेता हूँ और सो जाता हूँ। बोला इतनी मेहनत का नतीजा सिर्फ सुबह और शाम को 4 रोटी यानी टोटल 4 रोटी, और वो गरीब इंसान जो सिर्फ थोड़ा सा कमाता है, इतना ज्यादा मतलब इतनी ज्यादा जिसकी फैक्ट्रीज नहीं होती, वो तो उसको भी नसीब होती है, फिर तुम्हारा फायदा क्या हुआ इतना सारा धन अर्जित करने का जब वो तुम्हारे किसी काम का ही नहीं है। और भागवतम तो कहता है कि अर्थ कमाओ, हजारों लाखों करोड़ों रुपए कमाओ, लेकिन वो इसलिए कमाओ ताकि तुम उससे धर्म कर सको, ऐसा कार्य कर सको जिससे तुम अपवर्ग की जगह पर पहुंच सको, जिससे तुम ऐसी जगह पर पहुंचने का रास्ता खोल सको जहां से वापस तुम्हें इस दुखों भरी दुनिया में, परिश्रम भरी दुनिया में आना ना पड़े जहां पर हर समय परिश्रम है। तो हमें शास्त्र को फॉलो करना चाहिए, लेकिन भगवान यहाँ पर बता रहे हैं कि क्योंकि वो शास्त्र को नहीं देखते हैं इसलिए उनको पता ही नहीं होता है कि क्या करना है, वो कोई भी पाप पूर्ण कार्य करने से हिझकते झिझकते नहीं है, उसे अपनी शक्ति पर विश्वास रहता है और वो यह नहीं जानता कि उसे जो लाभ हो रहा है उसके पूर्व जन्म के कर्मों के फल के अनुसार है। ये बात है ना समझने की है कि आज हमारे पास जो कुछ है वो सब हमें पिछले जन्म के कर्मों के अनुसार मिला है। श्री प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि आज का व्यक्ति चाहे कितना ही मेहनत क्यों ना कर ले, बिल क्लिंटन नहीं बन सकेगा हर व्यक्ति, सुबह से लेकर रात तक अगर वो मेहनत करता भी है तो भी वो संसार का सबसे बड़ा धनी बिरला नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि उसके नसीब में नहीं है, उसने पूर्व जन्मों में ऐसे कर्म नहीं किए हैं कि वो इतना धनी बन सके। इसलिए कुछ कुछ हमारे नजरों के सामने होता है कि कुछ कुछ गरीब लोग होते हैं, सुबह सवेरे उठते हैं और गधों की तरह कार्य करते हैं और रात को उनको सिर्फ मेहनत का इतना मिलता है कि वो उस दिन खाना खा लेते हैं बस। और कुछ लोग होते हैं जो अपने ऑफिस में बैठते हैं, 2 चेक साइन करते हैं, 1,00,000 रुपए उनको मिल जाते हैं। तो इसका मतलब ये थोड़े है कि उन्होंने इतनी स्ट्रगल की उसके बदली में उसको मिल रहा है, इसका मतलब ये है कि उन्होंने पिछले जन्म के कर्म ऐसे थे कि उनको मिल रहा है। और इस बात को तो भगवान श्री कृष्ण ने 6.41 में बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है। भगवान ने कहा शुचि नाम श्रीमताम गे है योगो भ्रष्टो भी जायते। भगवान ने कहा अगर आप अपनी भक्ति को पूरा नहीं कर पाते हो, किसी प्रकार ऐसा होता है कि आप भक्ति की अंतिम चरम लक्ष्य तक नहीं पहुंचते हो जो कि कृष्ण प्राप्ति है, तो फिर नेक्स्ट जन्म में क्या होगा, या तो सदाचारी पुरुषों के परिवार में जन्म लोगे, यानी कि जहां पर भक्त पहले से रह रहे होंगे, आपको ऐसा माहौल मिलेगा, साधु संग मिलेगा कि आप बाकी की भक्ति अच्छे तरीके से कर सकोगे, या फिर श्रीमतांगे है, श्री का मतलब होता है धनवान, श्री का मतलब होता है सुंदरता, श्री का मतलब होता है संपन्नता, श्री का मतलब होता है परफेक्शन। तो ऐसे लोगों के कुल में आप जन्म लोगे जो धनवान होंगे, सुंदर होंगे, परफेक्ट होंगे। तो आज इसका मतलब है आपके पास अगर ये सारी चीजें हैं, धन है, सुंदरता है, परफेक्शन है, समाज में फेम है, यश है, या फिर अगर आप कुलीन परिवार में, एक ऐसे सभ्य परिवार में जन्म हुआ है, तो इसका साफ साफ उत्तर है कि आपने पिछले जन्म में बहुत अच्छे कर्म किए हैं, लेकिन आपकी भक्ति को अच्छे तरीके से बाकी मतलब आगे की भक्ति करने में आपको कोई रुकावट ना हो, आपका शरीर स्वस्थ हो, फाइनेंशियली फिजिकली मेंटली आप परफेक्ट हो, इसीलिए भगवान ने आपको ये शरीर दिया है ताकि बाकी की जो थोड़ी भक्ति रह गई उसको करो और आगे चलो, निकलो भगवान यहाँ से, ऐसी जगह से जहाँ पर दुखों से भरी दुनिया में आपको भगवान नहीं रखना चाहते हैं, इसलिए आपको पूरी सुविधाएं प्राप्त की। लेकिन यदि हम इन सुविधाओं का दुरुपयोग करते हैं और समझते हैं कि ये हमारी मेहनत से मिला है, तो श्याम प्रसाद रूपा जी बता रहे हैं कि आसुरी व्यक्ति अपने बाहुबल पर विश्वास करता है, वे कर्म के नियम पर नहीं, कर्म नियम के अनुसार पूर्व जन्मों के में उत्तम कर्म करने के फलस्वरूप मनुष्य उच्च लोक में जन्म लेता है, या धनवान बनता है, या सुशिक्षित बनता है। यानी कि यही बता रहे भगवान श्री प्रभुपाद जी कि अच्छे कर्म होंगे तो धनवान बनोगे, अक्कलमंद बनोगे, सुशिक्षित मतलब बहुत ज्यादा एजुकेटेड बनोगे, या बहुत सुंदर शरीर प्राप्त होगा। आसुरी व्यक्ति सोचता है कि ये चीजें आकस्मिक हैं और उसके बाहुबल के फलस्वरूप में, बेवकूफ ये सोचते हैं कि मैंने मेहनत की इसलिए मुझे मिला है, लेकिन वास्तविकता ये नहीं है। उसे विभिन्न प्रकार के लोगों, सुंदरता तथा शिक्षा के पीछे किसी प्रकार की योजना यानी व्यवस्था नहीं प्रतीत होती, उसे पता ही नहीं चलता कि मैंने भी उतनी, अभी कभी ऐसा होता है दो दोस्त एक साथ कारोबार स्टार्ट करें और एक दोस्त को बहुत ज्यादा मतलब मिलता है, बहुत ज्यादा उसका कारोबार चल पड़ता है और दूसरे को नहीं चलता है, तो क्या सोचता है कि मैंने इतनी अच्छी मेहनत की, भले उसने भी इतनी की हो, लेकिन वो उसे अपने बाहुबल पर ज्यादा अभिमान होता है। क्यों? श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं ऐसे आसुरी मनुष्य की प्रतियोगिता में जो भी सामने आता है वह उसका शत्रु बन जाता है। तो उसको कोई भी सामने आता है तो उसको लगता है वो मेरा दोस्त नहीं है, वो मेरा दुश्मन है। ऐसे अनेक आसुरी व्यक्ति होते हैं और उनमें से प्रत्येक अन्यों का शत्रु होता है, हर कोई दूसरे को जो आगे निकल रहा है वो उसका शत्रु उसको लग रहा होता है। यह शत्रुता पहले मनुष्यों के बीच, पहले आपस में दो लोग, फिर परिवारों के बीच उनकी फैमिलीज, तब समाजों के बीच उनका पूरा समाज, अंततः राष्ट्रों के बीच और पूरा मुल्क जो है वो एक दूसरे का शत्रु बन जाता है। अतएव विश्व भर में निरंतर संघर्ष, युद्ध तथा शत्रुता बनी रहती है। प्रत्येक आसुरी व्यक्ति सोचता है कि वह अन्य सभी लोगों की बलि करके रह सकता है, वो ये सोचता है कि दूसरे नाश हो जाएं, दूसरों का नाश करके मैं सुखी रह सकता हूँ। सामान्यतः ऐसा व्यक्ति स्वयं को परम ईश्वर मानता है और असुरी उपदेशक अपने अनुयायियों से कहते हैं कि, अभी असुरी उपदेशक भी होते हैं, यानी कि उनके अंदर भी कुछ है ना, बड़े होते हैं और वो प्रचार करते हैं और सबको, अपने अनुयायियों को, अपने जो अंदर में कार्य करते हैं उनको क्या कहते हैं, तुम लोग ईश्वर को अन्यत्र क्यों ढूंढ रहे हो, यानी कि भगवान को इधर उधर ढूंढने की जरूरत नहीं है, तुम स्वयं अपने ईश्वर हो, तुम स्वयं अपने भविष्य का निर्माण कर सकते हो, तुम कार्य करो, तुम ही और उसी की सफलता, कार्य की सफलता तुम्हारे भविष्य का निर्माण करेगी, कोई ईश्वर नहीं है, तुम जो चाहो सो कर सकते हो, ईश्वर पर विश्वास मत करो, ईश्वर का को दूर कर दो, ईश्वर मृत है, ये ही आसुरी लोगों का उपदेश है। यानी कि जो अपने बाहुबल पर सिर्फ अपने कर्म के ऊपर, जो सिर्फ और सिर्फ अपने कर्म के ऊपर ही विश्वास रखते हैं कि मैं कार्य करूंगा और उसके फलस्वरूप मैं सुखी हो जाऊंगा, इसका मतलब है उसे भगवान की योजना पर जरा भी मतलब विश्वास नहीं है कि भगवान भी है कुछ, तो ये आसुरी लोग होते हैं। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं यद्यपि आसुरी मनुष्य अन्यों को अपने ही समान या अपने से बढ़कर धनी तथा प्रभावशाली देखता है, तो भी वो सोचता है कि उससे बढ़कर ना तो कोई धनी है और ना ही प्रभावशाली। वो सोचता है मेरे जैसा कोई नहीं है। ऐसा हमने कल भी पढ़ा था ना, कोस्ति कोन्योस्ति सदृशोमया, मेरे जैसा कोई नहीं है। इसका मतलब है आप अभी अगर किसी भी मनुष्य को देखो जिसके मन में ये हो कि मेरे जैसा कोई हो ही नहीं सकता, तो मुझसे बढ़कर कैसे होता है, तो भगवान श्री कृष्ण उसे क्या कह रहे हैं कि वो असुर है। जहां तक उच्च लोग को जाने की बात है, वे यज्ञों को संपन्न करके करने में कोई विश्वास नहीं रखते, संपन्न करने मतलब। अब ऊंचे लोगों में कैसे जाना जाया जाता है, भगवान श्री कृष्ण ने बहुत ही अच्छे तरीके से भगवद गीता में इसकी वर्णन किया है कि यान्ति देव व्रता देवान पितृन यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूते जा यान्ति मध्याजिनोचि मां। भगवान श्री कृष्ण 9.25 में बताते हैं देवताओं की पूजा करो देवताओं के लोकों में जाओ, पितरों की पूजा करोगे तो पितरों के लोकों में जाओगे, भूतों की पूजा करोगे भूतों के लोकों में जाओगे, और मेरी पूजा करोगे तो मेरे पास आओगे। यानी जिसकी भक्ति करोगे उधर ही जाओगे, लेकिन उनको इन बात पे तो कोई विश्वास ही नहीं होता है। और वो क्या सोचते हैं, श्री प्रभुपाद जी कहते हैं वे ये सोचते हैं कि वे अपनी यज्ञ विधि का निर्माण करेंगे और कोई ऐसी मशीन बना लेंगे जिससे वे किसी भी उच्च लोक तक पहुंच जाएंगे। आजकल के साइंटिस्ट जो होते हैं, वैज्ञानिक जो होते हैं, वो ऐसी सोच रखते हैं कि ऊंचे लोकों में जाने के लिए हम कोई ना कोई मशीन बना लेंगे। ऐसे आसुरी व्यक्ति का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण रावण था। श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं रावण ने भी ऐसा सोचा था। क्या सोचा था, उसने लोगों के समक्ष ऐसी योजना प्रस्तुत की थी जिसके द्वारा वह एक ऐसी सीढ़ी बनाने वाला था जिससे कोई भी व्यक्ति वेदों में यज्ञ वर्णित यज्ञों को संपन्न किए बिना स्वर्ग लोक को जा सकता। और रावण ने वाकई में ऐसा सोचा था। क्यों सोचा था, क्योंकि यज्ञ करते थे ना, बहुत सारे लोग यज्ञ करते थे, उससे बहुत धुआं होता था और बहुत मंत्रास उनको उच्चारण करने पड़ते, तो उन्होंने बोला ये बहुत है ना तकलीफ देह है, बहुत ज्यादा कठिन है, ऐसा करता हूँ मैं एक सीढ़ी बना लेता हूँ और सीढ़ी पर बस चढ़ के जिसको स्वर्ग में जाना हो तो उस सीढ़ी से, जैसे हम लोग कैसे बिल्डिंग में चढ़ते, बोला ऐसे ऐसे लिफ्ट सोचा हो कि भाई ऐसी लिफ्ट बनाऊंगा, ऊपर जाएंगे सीढ़ी लिफ्ट से, और फिर जब दिल करेगा नीचे पाकिस्तान में और या इंडिया में या पृथ्वी लोक पर आ जाएंगे, कभी किसी लोक में चले जाएंगे कभी किसी लोक में चले जाएंगे। तो उसने वाकई में ऐसा सोचा था और लेकिन किया नहीं। मतलब किया नहीं क्या मतलब कि उसने सोचा था करूंगा, अभी तो बहुत उम्र पड़ी हुई है, अभी पूरी जिंदगी पड़ी हुई है, कभी ना कभी ऐसा कार्य करूंगा। और ऐसा कहा जाता है शास्त्र में कि वो संपन्न, वो ऐसा करना चाहता था लेकिन वो ये नहीं कर पाया। क्यों, क्योंकि उसने अच्छा विचार किया और अच्छा विचार आने के बाद, ये अच्छा विचार था, अगर ये बन जाता तो स्वर्ग जाना इजी हो जाता, लेकिन भगवान ने तो विधि लिखी है, लेकिन उसका आसुरी स्वभाव था, लेकिन फिर भी विचार तो अच्छा था स्वर्ग जाने का। लेकिन आसुरी लोग क्या होते हैं, उनकी एक मनोवृत्ति यहाँ पर एड करके मैं आपको बताती हूँ। जब अच्छा विचार आता है ना तो वो उसको डिले करते हैं, फिर कभी करेंगे फिर कभी करेंगे। भागवत श्रवण करने की बात आई, माला करने की बात आई, भागवत गीता सुनने की बात आई, तो उसको वो नहीं करेंगे, वो बोलेंगे कभी करूंगा अभी तो जिंदगी पड़ी। और बुरा विचार, जैसे रावण को बुरा विचार आया कि मुझे सीता को हरण करना है, 10 बजे सुरपंखा ने आके बताया कि भाई सीता आई हुई है उसको हरण कर लो, बहुत ही खूबसूरत है। 11 बजे गया मारीच के पास, 12 बजे गया साधु का रोल ऐसे वेश बनाया और सुबह होने से पहले ही सीता को वहां से लेकर आ गया। बस जैसे सुबह हुई हिरण को भेजा कि भाई नजर आएगा और मतलब फौरन से सीता को हरण कर लिया। मतलब असुरी लोग क्या होते हैं, जब उनके हृदय में बुरे विचार आते हैं तो उसको वो फौरन करते हैं, लेकिन अच्छे विचार आते हैं तो वो उसको डिले करते रहते हैं। अब यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी बताते हैं उसी प्रकार से जिस तरह उसने सोचा था, हालांकि स्वर्ग में या दूसरे लोकों में जाने की विधि लिखी हुई शास्त्र में, लेकिन आसुरी लोग इसको नहीं समझते हैं। और उसी प्रकार से आधुनिक युग के ऐसे आसुरी लोग यांत्रिक विधि से उच्चतर लोकों तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि हम ऐसे विमान ऐसे होते ना उड़ने वाले, यंत्र होते हैं, उड़ने वाले तैयारे होते हैं, मशीनें होती हैं जिसके जरिए वो सोचते हैं कि हम इसमें बैठकर, जैसे कोई चांद पर जाने की कोशिश करता है, कोई मंगल पर जाने की कोशिश, बोलते पागल हैं ये, इस तरीके से कोई चांद पर नहीं जा सकता। जो बोलते हैं ना हम चांद पर होकर आए, और वो सब झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि शास्त्र में ये विधि लिखी नहीं हुई है कि आप किसी मशीन में, किसी एरोप्लेन पर बैठ कर आप चांद्र पर जा सकते हो। शास्त्र में पूरा बताया गया है कि आपको अगर ऊपर ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्तो मध्ये तिष्ठति राजसा जघन्य गुण वित्तस्था अधो गच्छन्ति तामसा। शास्त्र में 14.18 में साफ साफ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर ऊपर के लोकों में जाना है तो आपको सत्वगुण विकसित करना पड़ेगा। ये तो रजोगुण है, आप मशीन पर बैठ के जा रहे हो या एरोप्लेन में, ये तो रजोगुण है, सत्वगुण तो विकसित किया ही नहीं, आप ऊपर के लोक में कैसे जा सकते हो। और अगर वो ये प्रूफ दे रहे हैं कि मैं वहां गया था, वहां पर हमने लैंड किया और वहां पर हमने झंडा गाड़ के आए, झंडा दिखा रहे हैं, और झंडा क्या है, वो हवा में लहरा रहा है, मतलब वहां पर वायु है, और वो आके कहते हैं कि दूसरे ग्रह में जहां पर हम लोग गए थे वहां पर ऐसी ऐसा वाइब्रेशन नहीं है कि मनुष्य जी वहां पर रह सके। जब हवा है इसका मतलब होता है वहां पर और भी चीजें होंगी, जो तत्व हैं, पांच तत्व, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, तो वहां पर रहेंगे। और वो पत्थर लेकर आ जाते हैं कि भाई ये देखो ये चांद ग्रह के पत्थर है या ये मंगल ग्रह के पत्थर। श्रीला प्रभुपाद जी बोलते सब बकवास है, ये तरीका ही नहीं है, ये जाने का तरीका नहीं है। उनके वो किधर गए होंगे रेगिस्तान में, झंडा जहां पर कुछ लोग नजर नहीं आ रहे होंगे, उनका जो ये एरोप्लेन था वहां पर जाके रुका होगा और उन्होंने झंडा अपना लगा दिया होगा और वहां से पत्थर लेकर आ गए होंगे। थोड़ी लिखा होता है कि ये चंद्रलोक है, आप इसमें प्रवेश कर रहे हो, ऐसा नहीं लिखा होता है, ऐसा शास्त्र में लिखा हुआ है कि उसके क्या क्या वहां पर चंद्रलोक है, उसके देवता हैं, उसके वहां के अलग जीव हैं, वो सब लिखा हुआ है शास्त्र में, उसको तो वो मान ही नहीं रहे, लेकिन वो अपनी मर्जी से जा रहे हैं। तो श्रीला प्रभुपाद जी बोलते हैं ये सब मोह के उदाहरण हैं, वो सब मोहित हैं। परिणाम ये होता है कि बिना जाने हुए वे नरक की ओर बढ़ते हैं। क्यों नरक की ओर क्यों बढ़ रहे हैं, क्योंकि श्रीला चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं चार ही वर्ण आश्रम यदि कृष्ण ना ही भजे, स्वकर्म करीते रवरवी पड़े मजे। वो अपने कार्य करता है अच्छे तरीके से करता है, चाहे किसी भी वर्ण में हो, किसी भी आश्रम में हो, किसी भी जगह पर वो रहता है, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, सन्यासी हो, लेकिन यदि वो भगवान की भक्ति नहीं करता है तो वो ईमानदार हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि वो भगवान की भक्ति नहीं कर रहा है ना। भगवान ने उसको सब कुछ दिया है, और जिसने आपको सब कुछ दिया है, जिसकी चीज है उसकी भोग रहे हो और उसको आप थैंक्स नहीं कर रहे हो, उसको आप अर्पण नहीं कर रहे हो, तो समझो आप ईमानदार नहीं हो, बेईमान, और बेईमान मतलब पापी, और पापी व्यक्ति नरक में जाएगा। इसीलिए श्रीला प्रभुपाद जी बोल रहे हैं परिणाम यह होता है कि भगवान की भक्ति नहीं करते हैं, इसीलिए बिना जाते हुए वो नरक की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर मोहजाल शब्द अत्यंत ही सार्थक है। श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं यहाँ पर जो लिखा हुआ है ना फर्स्ट लाइन की सेकंड में, मोहजाल समावृता। श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं ये वही वाला जाल है जो हम लोग कल पढ़ रहे थे ना, यहाँ पर भी श्री प्रभुपाद जी बता रहेंगे अत्यंत सार्थक है। जाल का अर्थ है मनुष्य मछली की भांति मोह रूपी जाल में फंस जाता है। ये मोह का जाल है, आप मनुष्य हो, फंस गए हो, और मोह क्या है कि मैं कुछ कर सकता हूँ, मेरी कोई औकात है, ये सबसे बड़ा मोह है, ये सबसे बड़ा जाल है। और जब इसमें आप फंस जाते हो, जब आप अपने दासत्व, अपने रियलिटी से हट जाते हो कि मैं क्या हूँ, जीवेर स्वरूप हो कृष्ण नित्य दास, ये भूल जाते हो और अपने आप को कुछ समझने लगते हो, अहंकार आ जाता है और सोचते हो कि मैं प्रभुत्व जताने की इच्छा होती है, मैं मुझे अपनी इंद्रियों की तृप्त करने की इच्छा होती है, ये मोह रूपी जाल है। और श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं वो इस इंद्रिय तृप्ति के जाल में फंस जाता है और इससे निकल नहीं पाता है और अंत तक इसी में फंसा रहता है। और आगे भगवान बताएंगे कि उसका क्या होने वाला है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।